السلام علیکم. یہ پارٹ 10 ہے. ناول بے باکوں کی تلاش. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری, مصنف ابن صفی, آواز ہما نہال. مزید کتب کے لیے 0300-291-9600 اور 0321-213-8225 پہ رابطہ کیجیے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 10. وہ تو پاپا ہی کے ذریعے مجھے اس کا علم ہونے دیتے کہ میری وجہ سے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, اور چونکہ اچانک وہ بات میرے سامنے آتی اس لیے میں اپنے اعصاب پر قابو نہ پا سکتی اور بے دھڑک اعتراف کر لیتی کہ ہاں مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے. اب تو میں نہایت صفائی سے انکار کر سکتی ہوں, بلکہ اپنی صفائی پیش کرنے کے سلسلے میں کوئی پلان بھی گھڑ سکتی ہوں. بہت ذہین معلوم ہوتی ہو, ڈرائیور مسکرایا, لیکن حقیقتاً اس معاملے میں خود کو بے حد نروس محسوس کر رہی ہوں. یونیورسٹی چلو گی یا نہیں؟ میں کہیں نہ جاؤں گی, خصوصیت سے تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں جا سکتی. وہ لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہیں, اگر تمہاری بجائے میرے گولی لگ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ تھے بھی فلمی قسم کے ڈاکو, چہرے نقاب میں چھپائے ہوئے تھے. خود میری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. ٹھیک اسی وقت کچھ لوگ پھاٹک میں گھستے چلے آئے. ان میں ایک سب انسپکٹر اور دو کانسٹیبل بھی تھے. سادہ لباس والوں میں سے ایک نے چیخ کر کہا, یہی ہے. پولیس والے ڈرائیور کی طرف جھپٹے اور سبیحہ اندازہ ہی نہ کر سکی کہ ڈرائیور کس طرح اچھل کر کار کے اوپر سے گزرتا ہوا دوسری طرف چلا گیا تھا. کار دراصل ایسی جگہ کھڑی تھی جس کے دونوں اطراف میں مہندی کی باڑ تھی, لہذا اب ڈرائیور تک پہنچنے کے لیے وہ یا تو وہی کرتب دکھاتے جو ڈرائیور نے دکھایا تھا, یا پھر مہندی کی قد آدم باڑ پھانکتے. جتنی دیر میں سب انسپکٹر گاڑی کے دروازے کی طرف متوجہ ہوتا, ڈرائیور کمپاؤنڈ کی دیوار پھلانگ کر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا. گاڑی کے دروازوں سے گزر کر وہ دیوار کی طرف بھاگتے چلے گئے. عجیب افراتفری تھی. گھر والے سبھی برامدے میں نکل آئے تھے اور سبیہ وہیں ہکا بکا کھڑی تھی. ارے کیا ہوا, کیا ہے؟ بیگم صاحبہ نے چیخ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ مردہ سی چال چلتی ہوئی برامدے میں آئی. ڈرائیور کو پولیس نے دوڑایا ہے, اس نے مضمحل سی آواز میں کہا. کیوں؟ پتہ نہیں, پولیس والوں کے ساتھ اور لوگ بھی تھے اور انہوں نے ڈرائیور کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہی ہے. پھر کیا ہوا؟ ڈرائیور بھاگ نکلا, وہ اس کے تعاقب میں گئے ہیں. صورت ہی سے ڈاکو معلوم ہوتا تھا. نانی کھرکھرائیں اور زہری نظروں سے سبیحہ کو گھورنے لگی. اب دیکھو کیا ہوتا ہے. بیگم صاحبہ سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولی, یہ لڑکی جو کچھ نہ کرائے تھوڑا ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ میں لائی تھی اسے, بیگم صاحبہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی. میں نے نوکری دی تھی. اس کی پیشانی پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں تھا. سبیحہ بھی جھنجھلا گئی. اب دیکھ کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں قاتل ہے یا ڈاکو. پھر وہ ان کی بک جھک کی پرواہ کیے بغیر سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی. اس واقعے سے دل کو اچانک دھچکا سا لگا تھا. وہ اس کے متعلق قطعی نہیں سوچ رہی تھی کہ ابھی پولیس آئے گی اور پتہ نہیں کس قسم کی پوچھ گچھ کرے گی. وہ تو بس ڈرائیور ہی کے متعلق سوچے جا رہی تھی. کیا وہ کوئی بہت بڑا مجرم تھا पुलिस से बचने के लिए यहाँ पनाह ली थी, या उस तक पुलिस की रहनुमाई करने वाले वही लोग थे जिन्हें पिछली रात उसकी तलाश थी? वो लोग तो पुलिस से मुताल्लिक नहीं मालूम होते थे। भला पुलिस वालों को क्या पड़ी है कि चेहरे नकाबों में छुपाए फिरें? वो मसहरी पर औंधी पड़ी सोचती रही थी। वक्त का भी एहसास नहीं रहा था। फिर दरवाजे पर दस्तक सुनकर चौंकी थी। उठकर दरवाजा खोला था और बेगम साहबा गुर्राई थी। चल अब कर जवाबदही। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं। गजब खुदा का, हमारे यहाँ पुलिस आई है। वो ड्राइंग रूम में आई थी और पुलिस इंस्पेक्टर ने बेहद न्याजमंदाना लहजे में ड्राइवर के मुतालिक पूछगछ शुरू की थी। सबीहा ने उसकी गुफ्तगू से अंदाजा कर लिया कि ड्राइवर हाथ नहीं आ सका। फिर सबीहा का मूड यकलत बदल गया और वो खुलकर बातें करने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर को तफसील से बताती रही कि किस तरह अचानक उसकी गाड़ी रुक गई थी और उसने नीचे उतरकर बोनट उठाया था, लेकिन पुर्जों के मुतालिक मालूमात ना होने की बिना पर गाड़ी रुक जाने की वजह ना मालूम कर सकी थी। फिर किसी तरफ से वो आ निकला था और थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद इंजन फिर काम करने लगा था। उसने उसे कुछ देना चाहा था, लेकिन उसने लेने से इनकार करते हुए कहा था कि वो मुलाजमत की तलाश में है। अगर किसी भले मानस की गाड़ी पर काम मिल जाए तो वो अपने लवाहिकीन का पेट पाल सकेगा, वरना अब पाकों की ही नौबत आने वाली है। फिर जब वो अपनी कहानी खत्म कर चुकी तो सब इंस्पेक्टर की जबानी ये सुनकर उसे अपने चेहरे पर गहरे सदमे के आसार पैदा करने पड़े थे कि वो एक बहुत बड़ी डकैती के केस में माकूल था। बेगम साहबा ने छूटते ही पूछा था कि क्या वो उसे पकड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन जवाब नफी में सुनकर उनके चेहरे पर मायूसी बिखर गई। शाम को पब्लिक गार्डन में खासी भीड़ रहती थी, इसके बावजूद भी बाज हिस्से बिल्कुल वीरान थे। बहुत बड़ा बाग था। साजिदा वहां पहुंच गई, लेकिन सोच रही थी कि उसे कहाँ होना चाहिए। पहली ही बार वो उस तरफ आई थी, किसी मखसूस जगह के लिए हिदायत भी नहीं मिली थी। वैसे उसे यकीन कामिल था कि अंजुमन के अफराद इसका ताकुब करते हुए यहाँ तक जरूर आए होंगे। उन्हें इमरान की तलाश थी, वो उसके खून के प्यासे थे। वो सोच रही थी, क्या इमरान सचमुच उससे यहाँ मिलेगा या कोई और चक्कर है? वो बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमती फिरी। अभी 5 नहीं बजे थे। वो तकरीबन 20 मिनट पहले यहाँ पहुँच गई थी। 5 बजे क्या होगा? वो सोचती रही और दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता तेज होती रहीं। उसने सोचा, थोड़ी अकल भी इस्तेमाल की जाए। जाहिर है कि वो किसी वीरान ही गोशे में मिलेगा। मुखालिफिन भी यही तवक्को रखते होंगे। फिर भरे पूरे हिस्सों में टहलते फिरने से क्या फायदा? वो एक वीरान हिस्से की तरफ चल पड़ी। उसका ख्याल था कि इस तरह वो अंजुमन के उन अफराद की तादाद भी मालूम कर सकेगी जो उसके ताकुब में होंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। दूर दूर तक किसी मुतनफ्फिस का पता ना था। उसने घड़ी पर नजर डाली। 5 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। दिल की धड़कन तेज से तेज तर होती जा रही थी। दफातन करीब ही झाड़ियों में सरसराहट हुई और वो चौंक पड़ी। फिर एक हाथ नजर आया जिसमें सियाह रंग का खौफनाक रिवॉल्वर था। उसका मुंह हैरत और खौफ से खुल गया, लेकिन वो फौरी तौर पर ना तो कुछ समझ सकी और ना फैसला कर सकी कि उसे क्या करना चाहिए। यक बयक उसी रिवॉल्वर से धुआं निकला, धमाका हुआ और वो चीख कर गिर पड़ी। बदहवासी में उसका भी एहसास नहीं था कि वो गिर पड़ने के बाद भी बड़े बेढंगेपन से चीखे जा रही थी। गोली तो लगी नहीं थी, फायर जरूर हुआ था और उसने अपने कान के करीब सनसनाहट के साथ ही आज भी महसूस की थी। चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े, कुछ बदहवासी में मुब्तला होकर नकासी के रास्ते की तरफ दौड़े, कई उन झाड़ियों में जा घुसे जहां से फायर हुआ था। साजदा के गिर्द भीड़ लग गई और शायद भीड़ ही उसके साकित हो जाने की वजह बनी थी। अब वो जमीन पर बेसुध पड़ी इस तरह पलकें झपका रही थी जैसे सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर किसी ने उससे पूछा था, आप ठीक तो हैं? और वो कराह कर उठ बैठी थी। किसने फायर किया था? मजमे में से किसी ने पूछा। आपको मेडिकल एड की जरूरत है, उनमें से एक ने जल्दी जल्दी कहा। फिर दूसरे से बोला, गाड़ी फौरन यहीं लाओ, इस वक्त यहाँ का अमला मोतरज ना होगा, जल्दी करो। साजदा ने देखा कि वो उंगलियों से अंजुमन का निशान विक्ट्री भी बनाए हुए है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जल्द ही उसने किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी और खिलाफ कायदा वो गाड़ी रविश से लॉन पर उतर कर उसके करीब आ लगी। चलिए उठिए, उस आदमी ने साजदा का बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा। वो गाड़ी में बैठ तो गई लेकिन जहन कुछ सोचने समझने से कासिर था। इतने में एक आदमी जो शायद गार्डन के जिम्मेदारान में से था उलझ पड़ा। वो स्टेयरिंग पर बैठे हुए आदमी से कह रहा था कि पुलिस के आए बगैर वो वहां से नहीं जा सकते। मैं डॉक्टर हूँ, उसे जवाब मिला। मैं समझ सकता हूँ कि इनके आसाब इस सदमे से किस दर्जा मुतासिर हुए हैं। मेरा फर्ज है कि उन्हें मेडिकल एड मिलने में ताखिर ना होने दूँ। मेरा साथी पुलिस के आने तक यहीं ठहरेगा। मैं अस्पताल पहुंचकर खुद ही पुलिस को मुत्तला कर दूंगा। फिर कबल इसके कि वो कुछ कहता, इंजन दोबारा बेदार हुआ और गाड़ी तेजी से रविश पर चढ़ गई। गार्डन के गेट से बाहर निकल के बाद ड्राइवर ने पूछा, तुम जख्मी तो नहीं हुई? नहीं, साजदा ने भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया। मेडिकल एड की जरूरत तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या तुमने फायर करने वाले की शक्ल देखी थी? नहीं, बच कर नहीं जा सकता, जो कोई भी हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो। तुम्हें यकीन है कि वही था? क्या कह सकती हूँ जबकि सूरत देख ही नहीं सकी थी। बस एक हाथ झाड़ियों से निकला था कबल इसके कि कुछ सोच भी सकती, फायर हो गया था। फिर कोई कुछ ना बोला। गाड़ी तेजी से रास्ता तय करती रही। साजदा सोच रही थी, देखिए अब क्या होता है, कहाँ ले जाई जाती है। जाहिर है कि अब वो उसे उस होटल के बाहर तक तो पहुंचाने से रहा, अंजुमन ही के किसी ठिकाने पर ले जाएगा। जी तो चाहा कि इस सिलसिले में इस्तफसार करे लेकिन फिर खामोश ही रही। इस वक्त तो सब कुछ ही गैर मुतवक्के तौर पर जहूर में आया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे इन हालात से गुजरना पड़ेगा। वो सोचती रही और फिर ड्राइवर की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। वो कह रहा था, मैं तुम्हें एक सुनसान इमारत में उतार दूंगा। सुनसान इमारत में? साजदा ने हैरत से दोहराया और खुद उसे अपनी आवाज अजनबी अजनबी सी लगी। हाँ, कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन सुनसान इमारत में क्यों? दरअसल मैं खुद फैसला नहीं कर सका कि मुझे क्या करना चाहिए, लिहाजा रिपोर्ट देकर तुम्हारे पते से आगाह कर दूंगा। साजिदा ने बदक्कत खुद को रोका, वरना इसके बाद तो वो यही पूछती कि किसको आगाह करेगा, किसे रिपोर्ट देगा। उसने एक तवील सांस ली और नशिस्त की पुश्त से टिक गई। तन बतकदीर हो जाने के अलावा और क्या चारा था। कुछ देर बाद गाड़ी एक इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुई। इमारत मुख्तसर ही सी थी, लेकिन इसके गिर्द बहुत बड़े रकबे में लॉन और बाग थे। ये कुंजी है, ड्राइवर ने जेब से एक कुंजी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंदर जरूरियात की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ बिल्कुल तन्हा होंगी, साजिदा ने पूछा। शायद ज्यादा देर तक के लिए नहीं। अच्छा, अब गाड़ी से उतर जाओ। वो तौहन व करहन गाड़ी से उतरी। अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन अभी इतना उजाला तो था ही कि वो बैरूनी बरामदे का जायजा ले सकती। उसके उतरते ही गाड़ी रिवर्स गियर में फाटक की तरफ दौड़ती चली गई थी। बस फाटक ही फाटक था, इसमें किवाड़ नहीं थे। साजिदा ने मुड़कर देखा, गाड़ी ने फाटक से भी गुजरकर रुख बदला था और तेजी से एक तरफ रवाना हो गई थी। क्या मुसीबत है, वो बड़बड़ाती हुई बरामदे की सीढ़ियां तय करने लगी। सदर दरवाजे पर कुफल नजर आया। आगे बढ़कर उसने कुंजी लगाई, कुफल खोलकर दरवाजे को धक्का दिया। नीम तारीख सी राहदारी नजर आई। अंदर दाखिल होते ही बाएं जानेब स्विच बोर्ड नजर आया, जिस पर सिर्फ एक ही स्विच था। स्विच ऑन करने पर राहदारी रोशन हो गई और वो दरवाजे को बंद किए बगैर आगे बढ़ती रही। इमारत सिर्फ चार कमरों पर मुश्तमिल थी। रोजाना जिंदगी के सारे लवाजिम से मुतालिक चीजें वहां मौजूद थीं। किचन में पहुंचकर रेफ्रिजरेटर खोला तो उसमें दूध की बोतलें तक मिली थीं। पूरी इमारत का जायजा लेने के बाद वो सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। वक्त काटने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। वो फिर बावर्ची खाने में वापस आई। उसने सोचा, सब कुछ मौजूद है तो फिर चाय ही क्यों ना बनाई जाए। बिजली का चूल्हा जलाकर पानी से भरी हुई केतली उस पर रख दी। कुछ देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी किस्म की आवाज सुनी हो। वो हमतन गोश हो गई। दूसरी बार यकीन हो गया कि वो कदमों की चाप ही थी और ज्यादा दूर नहीं मालूम होती थी। गालिबन करीब ही के कमरे में कोई चल रहा था। वो तेजी से बावर्ची खाने से निकली और उसी कमरे की तरफ चल पड़ी। अब आवाज तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन छठी हिस कह रही थी कि यहाँ उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। उस कमरे में कोई भी ना मिला। फिर उसने दूसरे तीन कमरे भी छान मारे, लेकिन ला हासिल। कुछ देर बाद वो उसे वहमा समझ लेने पर मजबूर हो गई। फिर ख्याल आया कि पानी तो उबलने लगा होगा, इसलिए दोबारा बावर्ची खाने की तरफ वापस आना पड़ा। उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती डाली और फिर कान किसी आहट की तरफ लगा दिए। जल्द ही वो फिर कमरों की जानिब वापस आई। चाय का कप भी साथ ही लेती आई थी। उसे मेज पर रख कर बैठ गई। बाएं जानिब किताबों की अलमारी थी, जिसमें खुशनुमा गटप वाली किताबें चुनी हुई थीं। हाथ बढ़ाकर एक किताब निकाली और उसकी वरक गर्दानी करती हुई चाय की चुस्कियां लेती रही। दफातन उसे महसूस हुआ जैसे किताब के हुरूफ कांपने लगे हों। रफ्ता रफ्ता सतरें आपस में गुड़मुड़ होने लगी और उसने बौखला कर चाय का कप मेज पर रख दिया। और अब उसे महसूस हुआ कि उसका सर चकरा रहा है। किताब भी हाथ से छूट पड़ी और दोबारा नहीं उठाई जा सकी। उसका सर सोफे की पुश्त से जा लगा था। पलकें झुकती चली गईं। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी मगर मुमकिन नहीं। फिर वो गर्दोपेश से बेखबर हो गई। पता नहीं कितनी देर तक इस हाल में रही थी। बहरहाल दोबारा सर उठाने के काबिल हुई तो अंदाजा करना दुश्वार था कि कितनी देर तक बेखबरी के आलम में रही है। लेकिन ये वो कमरा तो हरगिज नहीं था। जिस तो अगर होता तो बाएं जानेब वाली किताबों की अलमारी जरूर दिखाई देती। वो सोफा सेट भी नहीं था। वो मेज कहाँ गई जिस पर उसने चाय की प्याली रखी थी। आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी और फिर यक बयक उछल पड़ी। इस कमरे में तो दरवाजा भी नहीं था। चारों तरफ सपाट दीवारें खड़ी थी और सर पर सादा सी छत थी। कहीं कोई रोशनदान भी न दिखाई दिया। कमरा काफी कुशादा था लेकिन उसकी साख की बिना पर दम घुटने लगा था। उसने दीवार को छूते हुए पूरे कमरे का चक्कर लगाया। दीवारें भी सख्त थीं। उन्हें ठोक बजा कर भी देखा लेकिन वो लकड़ी या हार्डबोर्ड की ना साबित हो सकी। ओ तो क्या ये उसका मकबरा है, उसने सोचा। और फिर करीब था कि उसके हलक से हिस्टराई अंदाज की चीखें निकलने, तेज किस्म की सरसराहट सुनाई दी और सामने वाली दीवार दरमियान से शक होकर इधर उधर सिमटी चली गई। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल के अख्तितम पर स्टेज सा नजर आया जिस पर सिर्फ एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। दुबला पतला लंबा सा आदमी। फासला ज्यादा होने की बिना पर उसके खदो खाल नजर में वाजे नहीं थे। वो साकेत तो सामित खड़ी रही। दफातन लंबे आदमी ने हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया और गैर इरादी तौर पर उसके कदम उसी जानिब उठते रहे। कुछ आगे बढ़ने पर लंबे आदमी का चेहरा जाना पहचाना सा मालूम होने लगा और फिर जहां से उसने उसे पूरी तरह पहचाना बस वहीं की होकर रह गई। कोशिश के बावजूद भी कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। ये तो वही है जिसने प्रोफेसर राशिद के कागजात निकाल ले जाने की कोशिश की थी। वही जो खुद उसे उठा ले गया था और ऐसी बेहुदा हरकतें की थी कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं सकती थी। पहले इमरान ने उसे उसका नाम दावर बताया था लेकिन फिर यही दावर प्रोफेसर राशिद के तहखानों में किसी दूसरे रूप में नजर आया था। लेकिन सूरत से तो हर हाल में हरामजदगी ही जाहिर होती थी। आओ आओ, दफातन उसने प्यार भरे लहजे में उसे मुखातिब किया। डरो नहीं, मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ जिससे औरतें खौफ खाएं। बाज औकात सुबह से शाम तक औरतों की जूतियां खाता रहता हूँ। वो फिर भी अपनी जगह से ना हिली और खुद उसे अपनी तरफ आते देखा। करीब पहुंचकर वो उसी तरह खादिमाना अंदाज में झुका था जैसे साजदा का दरखरीद गुलाम हो। आखिर मलकर आलिया इस खादिम से खफा क्यों है, उसने गिड़गिड़ाकर कहा। साजदा सोच रही थी, यूं काम ना बनेगा। अगर तुम हिचकिचाती रही तो अपना सब कुछ खो बैठोगी। वो बड़े दिल आवेज अंदाज में मुस्कुराई और खालिस शाहाना लहजे में बोली, हमें याद नहीं कि हमने तुझे कहाँ देखा था। की खाक पर किसकी नजर रहती है अलिया हजरत? वो कमबख्त भी डायलॉग ही बोलने पर तुल गया था। हाजिर जवाबी पर हम खुश हुए, लेकिन फिलहाल कंगाल हैं, वरना इनाम जरूर देते। खजाने हुस्न से कुछ अता हो जाए, ये लो थू। साजिदा ने उसके मुंह पर थूक दिया। उसने बड़े इत्मीनान से रुमाल निकाल कर चेहरा साफ किया और बेहद संजीदगी से बोला, मैं इसका मुस्तहिक तो नहीं था, लेकिन बड़ी कदर अफजाई हुई अलिया हजरत। हमारे सैंडल भी बहुत मजबूत हैं। जो मिजाज हुस्न में आए, उसने सर झुकाकर कहा, बकवास बंद करो। साजदा शेर होती जा रही थी। फिर अलिया हजरत क्या समाज फरमाना पसंद फरमाएंगी? मैं नहीं समझ सकती कि ऐसा बेहुदा लोग कैसे अंजुमन में बार पाते हैं। मैं खुद ही एक अलहदा अंजुमन हूँ अलिया हजरत, आपकी अंजुमन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं यहाँ अंजुमन ही के एक फर्द के हमरा आई थी, कहीं और गई होंगी। यहाँ तो आपने महज इस खादिम की कोशिशों की बिना पर कदम रंजा फरमाया है। मैं नहीं समझी, हुजूर, जिसकी आहट पर बावर्ची खाने से निकल आई थी वो यही खादिम था। ओ समझी, वो दांत पीस कर बोली। फिर जब मैं कमरे में पहुंची तो तुम दूसरी तरफ से बावर्ची खाने में जा पहुंचे थे और चाय के पानी में कोई ख्वाब आवर चीज डाल दी थी। चाय के पानी में नहीं, बल्कि दूध की बोतलों में डाली थी। क्यों? इसलिए कि अलिया हजरत को यहाँ लाना चाहता था। तो फिर रिवॉल्वर से फायर भी तुम ही ने किया होगा। इस कहानी के सुनने का इश्तियाक जरूर है, क्या आप उसे दोहराना पसंद फरमाएंगी? मत बकवास करो, तुमने ही फायर किया होगा, वरना इमरान क्या जाने कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। एक बात है अलिया हजरत, इमरान किसी औरत पर फायर नहीं कर सकता। क्या मतलब? वो किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। फिर वो कौन था? हो सकता है इमरान ही रहा हो। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। हुजूर को मार डालने की नीयत से उसने फायर ना किया होगा। फिर वही बकवास, उसने मुझे वहां मिलने के लिए बुलाया था। हो सकता है उसने लापरवाही से शानों को जंबिश दी। तो फिर भला मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि हुजूर इमरान की वफादार हैं या अंजुमन की। अच्छा, तो फिर मैं तो हुजूर को इस अंजुमन की अंडर सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ, उसने अपनी तरफ इशारा करके कहा। शट अप, खूबसूरत औरतों की डांट फिटकार भी मेरे लिए लज्जत आगी होती है। हद से ज्यादा ना बढ़ो दावर। दावर नहीं, सिंह ही। मेरा नाम सिंह ही है, मैं चीनी हूँ। तुम कोई भी हो, बकवास बंद करो और मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मुझे होना चाहिए था। तुम्हें तो यहीं होना चाहिए था, सिंह ने सीने पर हाथ रखकर कहा, और तुम यहीं हो, हमेशा यहीं रहोगी। साजदा कुछ न बोली, उसे कहर आलूद नजरों से घूरे जा रही थी और सिंह के होठों पर हड्डियां झुलसाने वाली मुस्कुराहट थी। मैं अपनी महबूबाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। साजदा की समझ में नहीं आ रहा था कि उससे किस तरह पेश आए। इससे ज्यादा ढीठ आदमी आज तक उसकी नजर से नहीं गुजरा था। वो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन इस वक्त कटी जा रही थी। तो फिर क्या फैसला किया अलिया हजरत ने? खामोश रहो। चलिए ये भी सही, वो उसके पैरों के करीब फर्श पर बैठता हुआ बोला और वो बौखला कर पीछे हट गई। अब दोनों ही खामोश थे। सिंह उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता और वो नजरें चुराती। आखिर वो कुछ कहे बगैर उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फिर स्टेज की तरफ चला गया। नॉवेल बेबाकों की तलाश का बकिया हिस्सा अगले पार्ट 11 में समाप्त फरमाइए।